कैसेट नंबर 6 उनवान क्रॉसिंग एरो। ठीक है, कराओ मुलाकात। टाइगर ने कहा तो नौजवान ने फोन का रिसीवर रखा और काउंटर की दराज से कार्ड निकाल कर इसने टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। बाएं हाथ में राहदारी पे चले जाएं, राहदारी खत्म हो वहां दीवार में एक बारीक सी दर्द है, ये कार्ड इस दर्द में डाल दें और दरवाजा खुल जाएगा और आप मैनेजर साहब के ऑफिस में पहुंच जाएंगे। वहां भी आपको यही काम करना पड़ेगा जो आपने यहाँ किया है, फिर ही आप मैनेजर साहब से मुलाकात कर सकेंगे। नौजवान ने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा जैसे इसने टाइगर को दुनिया का सबसे कीमती राज बता दिया हो। शुक्रिया, टाइगर ने कहा और कार्ड उठाकर वो बाएं हाथ पर मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ गया। राहदारी खाली थी और बंद थी। टाइगर इत्मीनान से चलता हुआ राहदारी के अख्तितामी दीवार तक पहुंचा तो इसने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड दीवार में मौजूद दर्द में डाल दिया। चंद लम्हों बाद सरल की आवाज के साथ ही दीवार दरमियान से फटकर साइडों में चली गई। अब दूसरी तरफ जाती हुई राहदारी साफ दिखाई दे रही थी। टाइगर अंदर दाखिल हुआ तो सरल की आवाज के साथ ही इसके अकब में दीवार खुद ब खुद बराबर हो गई, लेकिन दूसरे लम्हे इसकी कनपटी से मशीन गन की नाल लग गई। टाइगर ने गर्दन घुमाई तो साइड पर एक खाली बनी हुई थी जगह जिसमें मशीन गन से मुसल्ला एक आदमी मौजूद था। क्यों आए हो, इस आदमी ने इंतहाई खड़क लहजे में कहा। मैंने कार्ड तो डाला है, टाइगर ने कहा। हाँ, लेकिन कार्ड चोरी भी तो किया जा सकता है, इस आदमी ने कहा। ओके, फिर चोरी के माल में तुम्हें भी हिस्सेदार बनाना पड़ेगा, मैंने मैनेजर ब्राउन से मिलना है, टाइगर ने कहा और जेब से एक बड़ा नोट निकाला उस आदमी के दूसरे हाथ में दे दिया। ओके, सीधे चले जाओ, इस बार इस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और मशीन गन हटा ली, लेकिन दूसरे लम्हे टाइगर का बाजू घुमा और वो चीखता हुआ उछल कर नीचे जा गिरा। और नीचे गिरते ही इसने उठने की कोशिश की, लेकिन टाइगर की लात हरकत में आई और कनपटी पर पड़ने वाली एक ही जब से वो आदमी झटका खाकर सीधा हो गया। टाइगर का असल में मूड बदल गया था, क्योंकि जो कुछ यहाँ इसने देखा था इसके मुताबिक तो उसे मारती तक पहुंचते पहुंचते कई घंटे गुजर जाएंगे। बाहर तो हॉल था इसलिए टाइगर वहां उलझना नहीं चाहता था, लेकिन ये बंद जगह थी इसलिए टाइगर ने यही फैसला किया कि अब यहाँ टेढ़ी उंगली के बगैर काम तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। टाइगर ने इस आदमी को फर्श पर गिरने वाली मशीन गन उठाई और उसकी नाल से बेहोश पड़े हुए आदमी के सीने पर रखकर टाइगर दबा दिया और गोलियां इस आदमी के दिल में बारिश के कतरों की तरह उतरती चली गई। इस आदमी के जिस्म ने झटका खाया और खत्म हो गया तो टाइगर ने मशीन गन सीधी की और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। राहदारी आगे जाकर एक दरवाजे पर खत्म हो गई जो बंद था। टाइगर ने दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाजा खुलता चला गया। दूसरी तरफ एक बड़ा सा वेटिंग रूम था जिसके साथ ही सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दे रही थी। नीचे एक काफी बड़ा हॉल था जिसमें जुए की मेज लगी हुई थी और वहां बड़े भरपूर अंदाज में जुआ खेला जा रहा था और जुआ खेलने वाले खासे मुअज्जज तबके के अफराद दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता हॉल में मशीन गनों से मुसल्ला कई अफराद घूमते फिर रहे थे। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक बड़ी बड़ी मूछों वाला आदमी खड़ा था जिसके हाथ में वैसे ही कार्डों का एक बंडल मौजूद था। टाइगर मशीन गन उठाए तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। तुम कौन हो और ये गन क्यों उठा रखी है तुमने, इस मूछों वाले ने हैरत भरे अंदाज में टाइगर से मुखातिब होकर कहा। मार्डी का ऑफिस का है, टाइगर ने इसका सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। क्या कह रहे हो, कौन हो तुम, इस आदमी ने बिजली की सी तेजी से जेब में हाथ डालते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे टाइगर ने मशीन गन का ट्रैगर दबाया और गोलियों की थरथराहट ने वो आदमी चीखता हुआ उछल कर नीचे गिरा। इसके साथ ही टाइगर ने सीढ़ियों के आखिरी प्लेटफॉर्म की आड़ ली और दूसरे लम्हे रेड रेड की तेज आवाजों के साथ ही इंसानी चीखों से गूंज उठा। टाइगर ने चंद लम्हों में वहां मौजूद तमाम गन ब्रदरों का खात्मा कर दिया था, जबकि जुआ खेलने वाले हैरत से बुद्ध बने ताकत बैठे ही रह गए थे। निकल जाओ सब, खुफिया रस्ते से निकलो, वरना, टाइगर ने चीख कर कहा तो वहां जैसे भगदड़ मच गई। इस लम्हे बाहर की तरफ से दौड़ने की आवाज सुनाई दी तो टाइगर बिजली की सी तेजी से इस तरफ मुड़ा और इसके साथ ही इसने एक बार फिर ट्रैगर दबा दिया। ये मशीन गनों से मुसल्ले दो आदमी जो एक छोटी सी राहदारी से निकल कर हॉल में दाखिल हो रहे थे, वो दोनों नीचे चीखते हुए गिरे और चंद लम्हों तड़पने के बाद साकित हो गए। तो टाइगर बिजली की सी तेजी से ओर से निकल कर दौड़ता हुआ इस राहदारी की तरफ चला गया। वो समझ गया था कि इस राहदारी में ही इस मैनेजर या मार्टी का ऑफिस होगा, यकीनन इसका ऑफिस साउंड प्रूफ होगा क्योंकि टाइगर जेरे जमीन दुनिया का बासी था, इसलिए से ऐसे लोगों की आदत और फितरत का बखूबी मालूम था। वो दौड़ता हुआ इस राहदारी में दाखिल हुआ तो राहदारी के आखिर में वाकई एक बंद दरवाजा मौजूद था। दरवाजे की ताकत बता रही थी कि कमरा साउंड प्रूफ है। टाइगर ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाजा अंदर से बंद था। टाइगर ने इसकी होल पर मशीन गन की नाल रखी और ट्रैगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही ऑटोमेटिक लॉक के पुर्जे बखेरते चले गए। टाइगर ने लात मारी तो भारी दरवाजा एक धमाके से खुलता चला गया। टाइगर उछलकर अंदर दाखिल ही हुआ था कि इसे बिजली सी चमकती हुई महसूस हुई और टाइगर ने यकलक साइड पर गोता मारा और एक तेज धार खंजर इसके बाजू को छूता हुआ अपने खुले दरवाजे से बाहर जा गिरा। इसके साथ ही टाइगर की मशीन गन तड़तड़ाई और कमरे में मौजूद दुबला पतला आदमी जो मेज की साइड से बाहर आ रहा था चीखता हुआ उछलकर कुश के बिल नीचे जा गिरा तो टाइगर दौड़ता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। इस आदमी ने उठने की कोशिश की लेकिन टांगी जख्मी होने की वजह से वो उठने में कामयाब ना हो सका क्योंकि टाइगर ने मशीन गन फायरिंग से इसकी टांगों को निशाना बनाया था। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो। टाइगर ने मशीन गन इसके सीने पर रखते हुए कहा। मगर माटी मगर तुम कौन हो, इस आदमी ने रुक रुक कर कहा। कहाँ है स्पेशल पॉइंट जहाँ तुमने प्रिंस ऑफ धम को पहुंचाया है, बोलो वरना, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा और साथ ही इसने पैर भी इसकी गर्दन पर रखकर दबा दिया। हटाओ हटाओ पैर, मैं बताता हूँ, इसने रुक रुक कर कहा। इसके मुलने का अंदाज बता रहा था कि टाइगर की पैर की वजह से इसकी शहरक कुचली जा रही है। बोलो वरना, टाइगर ने कहा। रिंगटन कॉलोनी कोठी नंबर 17, इसने रुक रुक कर कहा तो टाइगर इसके अंदाज से ही समझ गया कि वो दुरुस्त कह रहा है, इसलिए इसने पैर हटाया और तेजी से ट्रैगर दबा दिया। दूसरे लम्हे माटी का जिस्म दोबारा उछला, उसके साथ ही वो साकेत हो गया तो टाइगर तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हॉल खाली हो गया था, वहां से फ्लैशें ही पड़ी नजर आ रही थी। चंदम हो बाद टाइगर ने वो खुफिया रास्ता तलाश कर लिया और फिर वो खुफिया रास्ते से अगली सड़क पर पहुंच गया जहां ट्रैफिक चल रही थी। टाइगर ने मशीन गन अंदर ही फेंक दी थी और इसके साथ ही इसने बाहर आने से पहले न सिर्फ अपने चेहरे और सर से मास्क उतार कर फेंक दिया बल्कि दूसरा मास्क निकालकर इसने बिजली की तेजी से इसे सर और चेहरे पर चढ़ा लिया और दोनों हाथों से इसे थपथपा कर चंद लम्हों बाद एडजस्ट कर लिया क्योंकि इसे खतरा था कि यहाँ से निकलकर जाने वाले लास्टमन फ्रंट की तरफ जाकर बता दिया होगा और वहां से गुंडे किसी भी लम्हे इधर आ सकते या ऊपर हॉल से उतर सकते थे। फिर वो जैसे ही सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ फुटपाथ पर पहुंचा, उसने एक और दरवाजा खोलकर 10-12 गुंडों को हाथों में मशीन गने पकड़े दौड़कर इस दरवाजे की तरफ आते देखा। जहां से वो निकल आया था वो तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया, वो इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी दूर जाते ही इसे खाली टैक्सी मिल गई, वेलिंगटन कॉलोनी, टाइगर ने टैक्सी में बैठते हुए कहा और ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। अब वो टाइगर को दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि इस मार्टी ने सच बता दिया हो, वो जानता था कि इस हालत में लाशौरी तौर पर मुंह से सच ही निकलता है लेकिन फिर भी जब तक इसकी तस्दीक न हो जाती इस वक्त तक खदशा तो बहरहाल मौजूद ही था। तकरीबन आधे घंटे बाद टैक्सी एक जदीद कॉलोनी में दाखिल हो गई। कहाँ उतरना है जनाब आपने, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। करीबी रेस्टोरेंट में उतार दो, टाइगर ने कहा तो टैक्सी ड्राइवर ने बाद में सर हिला दिया और फिर कुछ फासले पर मौजूद एक रेस्टोरेंट के सामने टैक्सी रोक दी। टाइगर ने नीचे उतरकर कराया और टिप दी और टैक्सी ड्राइवर सलाम करके टैक्सी आगे बढ़ा ले गया तो टाइगर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। वो टैक्सी ड्राइवर को यह तासुर ना देना चाहता था कि वो किसी चक्कर में यहाँ उतरा है। फिर वो वाकई रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, रेस्टोरेंट तकरीबन खाली पड़ा हुआ था। टाइगर काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। मैंने एक फोन करना है, टाइगर ने काउंटर पर खड़े नौजवान से कहा। यस सर, नौजवान ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया और फोन उठाकर इसने टाइगर के सामने रख दिया। टाइगर ने रिसीवर उठाया और तेजी से जैगर के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मार्टी बोल रहा हूँ, टाइगर ने मार्टी की आवाज की नकल करते हुए कहा। मार्टी तुम क्यों कॉल की है, जैगर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे ने कहा। चीफ पहुंच गए या नहीं, टाइगर ने कहा। नहीं अभी नहीं, ओ एक मिनट, वो चीफ आ गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही रब्ता यखलक खत्म हो गया तो टाइगर ने भी जल्दी से रिसीवर रखा और जेब से एक नोट निकालकर इसने नौजवान के हाथ पर रखा और बाकी तुम्हारी टिप के अल्फाज कहकर वो तेजी से मुड़ा और जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। इसका मतलब था कि ट्रैक्सलर इसकी तवक्का से पहले ही पहुंच गया था, हालांकि अभी 2 घंटे भी ना गुजरे थे। बहरहाल वो तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर इसने 17 नंबर कोठी चेक कर ली। वो तेजी से साइड गली में से होता हुआ इस कोठी के आकार में पहुंच गया। एक बार तो उसे ख्याल आया कि अगर इसके पास बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्तल होता तो वो ज्यादा इत्मीनान से कार्रवाई कर सकता था, लेकिन चूंकि गैस पिस्तल मौजूद ना था इसलिए इसने ये ख्याल झटक दिया। अगली गली में कूड़े के ड्रोर ड्रम दीवार के साथ ही पड़े हुए थे जिनके ऊपर बाकायदा ढक्कन लगाए गए थे। टाइगर उछलकर एक ड्रम पर चढ़ा और दूसरे लम्हे दीवार के सिरे पर पहुंच चुका था। इसके साथ ही इसका जिस्म उछला और दूसरे लम्हे वो आहिस्ता से अंदर कूद गया। इसके कूदने की वजह से हल्का सा धमाका हुआ इसलिए टाइगर चंद लम्हों तक वहीं दबका रहा, लेकिन इसे मालूम था कि ट्रेसलर और मार्टी जैसे गुंडों की फितरत सीक्रेट एजेंसियों से अक्सर मुख्तलिफ होती है। ये लोग इंतहाई मुश्तर मिजाज होते हैं इसलिए वो जल्द अज जल्द तक पहुंच जाना चाहता था ताकि इमरान उसके साथियों से पहले इस जैगर और ट्रेसलर को छाप सके। वो इंतहाई मोहतात अंदाज में दौड़ता हुआ साइड गली से फ्रंट की तरफ बढ़ने लगा। चूंकि इसे मालूम न था कि यहाँ कितने अफराद हैं इसलिए वो पूरी तरह मोहतात था। इसने फ्रंट पर पहुंचकर सर बाहर निकाल कर झांका तो कार गैराज में मौजूद थी, लेकिन कोई आदमी नजर न आ रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ा और बरामदे में आ गया, लेकिन बरामदे में भी खाली पड़ा हुआ था। एक लम्हे के लिए तो उसे ख्याल आया कि कोठी खाली है और मार्टी ने इसे गलत पता बता दिया, लेकिन दूसरे लम्हे उसके कानों में दूर से किसी बोलने की हल्की सी आवाज पड़ी तो उसने अपना ख्याल झटक दिया। आवाज उसे दरमियानी राहदारी के आखिरी सिरे से सुनाई दे रही थी। वो तेजी से राहदारी में दाखिल हुआ। राहदारी के आखिरी में सीढ़ियां नीचे जा रही थी और नीचे हल्की सी रोशनी भी नजर आ रही थी। वो दबे कदमों लेकिन बड़े चौंकना अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। आहिस्ता से सीढ़ियां उतरकर जब वो बंद दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा पूरी तरह बंद ना था। इसमें झरी मौजूद थी और रोशनी झरी में से निकलकर बाहर आ रही थी। अंदर बातें करने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी और फिर आवाज सुनते ही टाइगर बेख्तियार छुपकर उछल पड़ा। इसके चेहरे पर मुसरत से तासुरात उभर आए क्योंकि ये आवाज फ्रेसलर की थी, वही खनकदार मखसूस आवाज। इसका मतलब था कि वो दुरुस्त जगह पर पहुंच गया है। इसने आगे बढ़कर झरी से आंख लगा दी और फिर अंदर का मंजर देखते ही वो बेख्तियार चौंक पड़ा। दरवाजा साइड पर था और इसे यहाँ से पूरा हॉल नजर आ रहा था। इमरान और उसके साथी रॉड्स वाली कुर्सियों के कतार में दरमियानी कुर्सी पर रॉड्स में जकड़े हुए मौजूद थे। सिर्फ इमरान ही होश में था जबकि बाकी साथी बेहोश थे। टाइगर ये देखकर हैरान रह गया कि इमरान और उसके साथी अपने असल चेहरों में थे। इमरान के सामने एक लंबे का तो दुबले जिस्म का आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि इसके करीब एक डियो हेकल जलादुम आदमी खड़ा था। उसने खारदार कूड़ा अपनी बैलेट के ऊपर लपेटा हुआ था और एक मशीन गन इसके कांधे से लटक रही थी। होगी कोई तुम्हारी दोस्त, बहरहाल अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक इस लंबे कद और दुबले जिस्म के आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके साथ ही टाइगर समझ गया कि यही ट्रेसलर है। एक मिनट, तुम्हें जल्दी क्या है, मेरी बात सुन लो, इमरान ने कहा। नहीं, मैं कोई बात सुनने का ख्वाहिशमंद नहीं, रॉफ तंदुरुस्त कहता है। तुम इंतहाई खतरनाक आदमी हो, इसलिए तुम सबका जल्द से जल्द हलाक हो जाना इंतहाई जरूरी है। मशीन गन मुझे दो जैगर, ट्रेसलर ने यकलक उठकर खड़े होते हुए कहा। इसके चेहरे के तासुरात यकलक बदल गए थे। टाइगर ने मशीन पिस्तल की नाल का रुख झरी में से इसकी तरफ कर दिया। फिर जैसे ही ट्रेसलर ने मशीन गन जैगर से लेकर इमरान की तरफ सीधा किया, टाइगर ने ट्रैगर दबा दिया और टकराव की आवाजों के साथ ही ट्रेसलर के हाथ से मशीन गन निकलकर एक धमाके से एक तरफ जा गिरी। इसके साथ ही टाइगर एक झटके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और दूसरे लम्हे जैगर की हलक से निकलने वाली चीखों से कमरा गूंज उठा। खबरदार, टाइगर ने चीखकर ट्रेसलर से कहा, जिसका हाथ बिजली की सी तेजी से जेब की तरफ बढ़ा था। लेकिन ट्रेसलर ने हाथ न रोका तो टाइगर ने एक बार फिर ट्रैगर दबा दिया और ट्रेसलर चीखता हुआ चलकर पहलू के बल नीचे गिरा। मगर टाइगर ने ट्रैगर से उंगली ना हटाई और ट्रेसलर चीख कर सीधा हुआ और ताकत हो गया। अरे, तुमने इसे मार डाला, इससे तो क्रॉसिंग एरो लेना था, इमरान ने चीखते हुए कहा। नहीं बॉस, ये जिंदा है, टाइगर ने जवाब दिया और मुड़कर वो कुर्सियों के अकब से होता हुआ इमरान की कुर्सी के अकब में आया और दूसरे लम्हे अकब की तरफ पाए पर मौजूद मखसूस बटन प्रेस होते ही खटाक की आवाज के साथ ही रॉड्स गायब हुए तो इमरान उछल कर खड़ा हो गया और फिर तेजी से फर्श पर सीधे पड़े हुए ट्रेसलर की तरफ तीर की तरह बढ़ा। इसके बाजू और टांगों पर गोलियां थी, इसलिए वो जिंदा था, लेकिन जख्मों से खून निकलने की वजह से इसकी हालत लम्हा लम्हा हफ्ता होती जा रही थी। बोलो कहाँ है क्रॉसिंग एरो, बोलो, इमरान ने इसके गर्दन पर पैर रखकर इसे थोड़ा सा मोड़ते हुए कहा। मुझे बचा लो, सब कुछ ले लो, मुझे बचा लो, ट्रेसलर ने रुक रुक कर कहा। जल्दी बताओ, सच बताओगे तो अभी तुम्हारी बैंडेज कर दी जाएगी, इमरान ने कहा। तो ट्रेसलर ने रुक रुक कर स्पेशल लॉकर और बैंक के बारे में बता दिया। इस लॉकर की चाबी कहाँ है, इमरान ने पूछा। मेरे हेडक्वार्टर में, ट्रेसलर ने तकरीबन डूबते हुए लहजे में कहा। उसके साथ ही इसने जिसम को एक जोरदार झटका खाया और वो साकित हो गया, इसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी। ओ वेरी बैड, ना जाने इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इमरान ने पैर हटाते हुए कहा। मुझे मालूम है बॉस, मैं वहीं से होकर आ रहा हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। ओ फौरन जाओ और वहां से चाबी ले आओ, जल्दी करो, मैं साथियों को होश में लाता हूँ, हमने क्रॉसिंग एरो हासिल करना है इससे पहले कि कोई नया चक्कर चल जाए, इमरान ने टाइगर से कहा। तो टाइगर तेजी से दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो हसदे आदतन एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, टाइगर ने वाकई इस मिशन में काम दिखाया है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये मिशन हकीकतन टाइगर का ही है, अगर वो चंद लम्हे ही लेट हो जाता तो मुझ समेत सारे साथी ट्रेसलर की गोलियों का शिकार हो जाते। मुझे तसव्वुर तक ना था कि टाइगर भी यहाँ इस अंदाज में पहुंच सकता है। मैं तो यही समझा कि आखिरकार आखिरी वक्त ही आप पहुंचा, क्योंकि मैं वाकई मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका था, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपने टाइगर को ट्रांसमीटर कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन इसने कॉल क्यों अटेंड ना की, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हकीकी हैरत के तासरात उभर आए। क्या मतलब, क्या अब तुम्हें यहाँ बैठे बैठे कशफ होना शुरू हो गया है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे क्या कशफ होना है, जूलिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इमरान ने कहा। हैरत है, क्या जूलिया इस तरह की आम बातें भी रिपोर्ट में लिख देती है, इमरान ने कहा। यह आम बात नहीं बल्कि खास बात है इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने कहा। इसमें क्या खास बात हो गई, मैंने टाइगर से पूछा था, इसने बताया था कि इसका वॉच ट्रांसमीटर किसी झटके की वजह से खराब हो गया था और बस, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। आपकी खुसूसी तौर पर पूछने से ही तो पता चलता है कि यह आम बात नहीं है, अगर पहले टाइगर से रब्ता हो जाता तो शायद वाकयात की नौयत ही तब्दील हो जाती, क्योंकि टाइगर ने जोटू के जरिए स्ट्रेसलर के असल हेडक्वार्टर का खोज लगा लिया जबकि आप रेनबो क्लब जा पहुंचे थे, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। हाँ वाकई इस लिहाज से तो ये खास बात ही है, लेकिन क्या जूलिया वो बातें भी रिपोर्ट में लिखती है जो इसमें करता रहता हूँ मैं, इमरान ने आगे की तरफ झुककर पुरस्कार से लहजे में कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये बातें वो कैसे लिख सकती है इमरान साहब, यही बातें तो इसका असासा होती है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। तो इमरान इसके खूबसूरत और गहरे जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब को क्रॉसिंग एरो का डुप्लीकेट कहाँ है, अचानक ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब, क्या कह रहे हो, क्या वो सर सुल्तान तक नहीं पहुंचा, ये कैसे हो सकता है, मैंने इसे इंटरनेशनल कोरियर सर्विस के जरिए जॉबर को भिजवाया था और कहा था कि वो खुद जाकर इसे सर सुल्तान को पहुंचाए, इमरान ने इंतहाई बेचैन बल्कि बौखलाए हुए लहजे में कहा। मैंने तो सर सुल्तान से पूछा था, उन्होंने कहा कि इनके पास तो कोई ऐसा पैकेट नहीं पहुंचा, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान का चेहरा यकलक परेशानी की शिद्दत से बिगड़ गया। ओ तुमने जॉसफ से मालूम किया, इमरान ने रिसीवर उठाते हुए कहा। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आपने किसे भेजा है और ना ही जूलिया की रिपोर्ट में ये बात दर्ज थी, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ मैंने इसे अपने तौर पर भिजवाया था, इसे वाकई मालूम नहीं हो सकता, लेकिन जॉसफ तो ऐसी गलती नहीं कर सकता, इमरान ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। इसे अपनी सारी जद्दोजहद लेकर जाती दिखाई जा रही थी, इसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस, दूसरी तरफ से जॉसफ की आवाज सुनाई थी। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने इंतहाई खुश लहजे में कहा। यस बॉस, जॉसफ का लहजा यकलक मौतबाना हो गया। मैंने नाराग से तुम्हें इंटरनेशनल कोरियर सर्विस के जरिए एक पैकेट भिजवाया था, क्या वो मिल गया है तुम्हें, इमरान ने इंतहाई स्पॉट लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जॉसफ ने जवाब दिया। तो इमरान ने इख्तियार इस तरह सबील साफ किया जैसे सालों के प्यासे को अचानक पानी का चश्मा नजर आ गया, जबकि ब्लैक जीरो के सते हुए चेहरे पर भी इत्मीनान के तासीरात उभर आए। कहाँ है वो, इमरान ने पूछा। वो मैंने सरदावर को पहुंचा दिया है बॉस, जॉसफ ने जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार चौक पड़ा, इसके चेहरे पर हैरत के तासीरात थी। क्यों, जबकि मैंने तुम्हें फोन पर कहा था कि इसे सर सुल्तान को पहुंचाना है, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। बॉस जब ये पैकेट पहुंचा तो मैंने सर सुल्तान को फोन किया तो इनके पीए ने बताया कि सर सुल्तान सरकारी दौरे पर गए हुए हैं और इनकी वापसी 2 रोज बाद होगी, और चूंकि आपका हुक्म था कि मैं इसे फौरी तौर पर पहुंचाऊं इसलिए मैंने इसे सरदावर को पहुंचा दिया, ताकि एक तो आपके हुक्म की फौरी तामील हो जाए, दूसरा बहरहाल वो भी सर ही है, दूसरी तरफ से जॉसफ ने बड़े सादे से लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार कहकशा मार के हंस पड़ा। अगर सरदावर भी मुल्क में मौजूद ना होता फिर तुम इसे कैसे पहुंचाते, इमरान ने हंसते हुए कहा। वो वाकई जॉसफ की बात से लुत्फ ले रहा था और ब्लैक सीईओ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। आपके डैडी सर अब्दुलरहमान को बॉस, जॉसफ ने बस दस्तूर सादे से लहजे में कहा और इमरान अपनी आदत के खिलाफ एक बार फिर खलखलाकर हंस पड़ा। ठीक है, आइंदा मैं साथ ही बताया करूंगा कि अगर मतलूबा आदमी ना हो तो इसे कहाँ पहुंचाना है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही इसने किरादल दबा दिया और फिर टून आने पर इसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ, रब्ता कायम होते ही एक सर दावर की आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSCDSC ऑक्सिन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस खैजे में कहा। अरे तुम तो एक्रीमिया की सैर करते फिर रहे थे, कब वापस आए हो, दूसरी तरफ से सलाम दुआ के बाद कहा गया। ये बात आपको जॉसफ ने बताई होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ इसने मुझे फोन किया और अपने बारे में बताया तो मैं बेहद हैरान हुआ, क्योंकि इससे पहले इसने मुझसे कभी रब्ता नहीं किया, फिर मेरे पूछने पर इसने बताया कि तुमने इसे एक्रीमिया से कोई पैकेट भेजा और साथ ही हुक्म दिया है कि ये पैकेट फौरी तौर पर सर सुल्तान को पहुंचाया जाए, लेकिन बकतौल इसके सर सुल्तान सरकारी दौरे पर मुल्क से बाहर गए हुए हैं और चूंकि इसने बहरहाल हुक्म तामील करनी है इसलिए वो पैकेट मुझे पहुंचाना चाहता है। मैं इसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, मैंने इसे कहा कि जब सर सुल्तान आ जाए तो वो पैकेट इन्हें पहुंचा दें, लेकिन इसने कहा कि चूंकि आका का हुक्म है इसे फौरी पहुंचाया जाए और वो आका के हुक्म की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता, तो मजबूरन मैंने इसे अपनी लेबोरेटरी में कॉल कर लिया और वो पैकेट मुझे दे दिया। इस तरह मुझे ये मालूम हुआ कि तुम एक्रीमिया की सैर करते फिर रहे हो, सर दावर ने तफसील जवाब देते हुए कहा। शुक्रिया, आपको सर का खिताब मिला हुआ है और पैकेट आपके पास पहुंच गया, वरना पैकेट डेयरी को पहुंच जाता तो बड़ा मसला बन जाता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, सर का क्या मतलब, क्या खिताब, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। सरदावर ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने जोर रखकर जवाब तफसील से बता दिया और सरदावर और काफी देर तक इमरान बेख्तियार हंसते रहे। बहुत खूब, पैसे इस कदर ताबदार और फरमा बदारी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता जिस कदर जौलफ ने दिखाई है। लेकिन अब इस पैकेट का क्या करना है, सरदावर ने कहा। आपने इसे खोला तो नहीं, इमरान ने चौंक कर पूछा। मैंने क्यों खोलना था, ये तो अमानत थी, सरदावर ने चौंक कर कहा। सर सुल्तान ने भी इसे अपने आपके पास ही भिजवाना था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि जौलफ आपकी लेबोरेटरी नहीं जानता, इसलिए मैंने इसे कह दिया कि वो सर सुल्तान को पहुंचा दे। मैं इस क्रॉसिंग एरो की डुप्लीकेट है, इमरान ने कहा। क्या क्या कह रहे हो, ओ खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने इसे वापस हासिल कर लिया। यहाँ तो वाकई हुक्काम की जान पर बनी हुई थी, पूरे मुल्क का दिफा हर लम्हे शदीद खतरे की जद में था, सरदावर ने बेख्तियार होकर कहा। हाँ इसीलिए तो इसे वापस हासिल किया, वैसे भी काफिरस्तान वाले इसकी डील कर रहे थे और यकीनन काफिरस्तानी हुक्काम की टिप पर इस मुजरिम तंजीम ने इसे हासिल किया होगा। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि इसने हम पर अपनी रहमत की और हमें ये वापस मिल गया। आपसे मुतल्लिका हुक्काम को भी भिजवा दें, इमरान ने कहा। ठीक है मैं अभी भिजवा देता हूँ, सरदावर ने कहा तो इमरान ने लाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासरात नुमाया थे। नॉवेल क्रॉसिंग एरो का इख्तिताम हुआ।